آج کا پریکٹس کلاس ہے 5/11/1966 پہلے پیج کی مدھیات میں بات چل رہی تھی اس دنیا کے منشی تو سبھی ہی کہتے ہیں کہ بھرشٹاچاری پنے سے مکتی کیسے ہو. مکت کیسے بنے؟ ایم آبجیکٹ ہے اسکول میں بہت اچھی سمجھانے کی ایم آبجیکٹ ہے, اور بابا نے رات میں بھی سمجھایا. جو کوئی بھی آتے ہیں سمجھنے کے لیے ان کو پہلے پہلے اونچے سے اونچے بھگونت کا پریچے دو. کون ہے اونچے سے اونچا بھگونت؟ جو بھرشٹ آچرن سے بالکل پرے ہے, وہ ہی بھرشٹاچار سے مکت کر سکتا ہے. گایا بھی جاتا ہے اونچا تیرا دھام, اونچا تیرا نام, اونچا تیرا کام. کہاں کام کرتا ہے؟ اونچے سے اونچے ستیہ دھام میں کام کرتا ہے کیا؟ ستیہ دھام جہاں ستیہ آتمائیں رہتی ہیں, جہاں پنچ بھوت اور پنچ بھوتوں کے بنے شریر نہیں ہوتے ہیں, وہاں کام کرتا ہے. اس اونچے سے اونچے بھگونت کا پورا پریچے دینا چاہیے. کیا کام کے آدھار پر نام ہے؟ اور کام کون سے دھام میں آ کر کرتا ہے؟ اور وہاں اس کا روپ کیا ہے جہاں کام کرتا ہے؟ گن کیا ہے؟ سارا پریچے دینا چاہیے. ترمورتی کے چتر میں وہ چتر بھی دیا ہوا ہے. اونچے تے اونچے بھگونت کا کون سا چتر ہے؟ त्रिमूर्ति के चित्र में। अरे शंकर का चित्र है, कहा तो ये गया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी जयंती भी भरतनाट्य पहनी है। जयंती यार अंत में पूरी जय जयकार। ऐसी जय जयकार होती है जो सारी दुनिया में उसके यादगार चित्र बनाए जाते हैं। भले वो विचित्र है, चित्र से विपरीत कहा जाता है, फिर भी उसका चित्र भी है और विचित्र भी है। बताओ त्रिमूर्ति में उसका कौन सा चित्र है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अच्छा यहां संगम युग में उसका क्या यादगार है? यादगार तो संपूर्णता का ही बनता है, अधूरे रूप का तो यादगार नहीं बनता है। और उसके संपूर्ण रूप का आदेश क्या है? आदेश है ही वेद के बाप से, जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। जिसको ही बाप कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि का भी बाप कहा जाता है, आत्माओं का भी बाप कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का भी ऊंचे से ऊंचा बाप और आत्माओं का भी ऊंचे से ऊंचा बाप। उनको भगवान कहा जाता है। उनको कह करके दूर कह दिया, उनको इनको नहीं, जो तथाकथित बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। किनको समझते हैं? है ब्रह्मा को समझते हैं, जो ब्रह्मा बाजू में ही बैठा हुआ है, तो इनको नहीं कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। उनको कहा जाता है क्यों दूर कर दिया? और दूर भी कर दिया तो उसको क्यों नहीं कहा? एक को क्यों नहीं कहा? उनको माने एक से ज्यादा या एक? जबकि उनके जो नीचे है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत के जो नीचे हैं, उन तीनों को भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। कौन है वो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उसके नीचे हैं? यहाँ तो मनुष्य कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव कहते तो हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। ऊंचे से ऊंचा भगवंत अभी वो ही भगवंत कहते हैं, जो ऊंचे से ऊंचा है। कहते हैं माने ऊंचे से ऊंचे धाम, सत्य धाम परम धाम में बैठकर कहते हैं, है? वहाँ आवाज होती है कि वाणी से परे धाम है, तो वहाँ तो नहीं कहते होंगे। कहते नहीं होंगे कि मुझे याद करो, सप्तधाम में बैठ कर कहते होंगे कि मुझे याद करो। उनको वहां मुख होता है, हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं, हैं? वहां तो नहीं होते। तो जो दुनिया में यादगार बनती है वो परमधाम के रूप की यादगार बनती है, या कोई और देश है? जहां बैठ कर कहते हैं मुझे याद करो, तो पावन बन जाएंगे क्या? निराकार धाम में जो रूप है उसे याद करने से पावन नहीं बनते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां आर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। तो क्या मुसलमान और उनका धर्म पिता उस निराकारी धाम में रहने वाले अर्श में रहने वालों को याद करने से पावन बन जाते हैं। पावन बनकर पावन दुनिया स्वर्ग में आते हैं, आते हैं। तो बताओ कौन कहते हैं, कहाँ कहते हैं कि मुझे याद करो? मुझे याद करते हैं तो पावन बन जाते हैं। है? कोई नहीं बताता है? साकार दुनिया में आकर कहते हैं, वो निराकार ज्योति बिंदु साकार दुनिया में आकर मुख से कहते हैं, मुख भी तो एक इंद्रिय है ना, मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है। तो ये ऊंचे से ऊंची बात ज्ञान की कहते हैं कि मुझे याद करो। कहने वाली आत्मा कौन है? हैं? आत्मा तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत की है, परंतु ऊंचे से ऊंचे भगवंत को मुख नहीं है। तो किसका आधार लेते हैं? है? जिसका आधार लेते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा नाम रखते हैं, परंतु ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। कौन से ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो? एक को याद करो, या जितने भी नामधारी ब्रह्मा हैं जो विष्णु या विष्णु की भुजाएं बनते हैं, सहयोगी भुजाएं, उन सबको याद करो। तो वो एक ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बाप है, है? किसका बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि पतित है या पावन है? सब पतितों का बाप है। तो सबसे जास्ती पतित से पतित बाप होगा। कि पावन होगा? है पावन प्रजापिता ब्रह्मा पतित। तो पतित कैसे कहेगा कि मुझे याद करो? है पावन बनकर कहता है। तो जब पावन बनता है तो उस पावन का पावन रूप भी बनता होगा कि पतित रूप होगा? तो वो पावन रूप कौन सा है जिसको ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है? क्योंकि ऊंचे से ऊंच और नीचे से नीचे कहाँ गाया जाता है? सप्तधाम की तो बात ही नहीं, ये तो साकार सृष्टि की बात है। जहाँ ऊंचे से ऊंचे देवताएं भी होते हैं, विकारी मनुष्य भी होते हैं, पतित कर्म करने वाले राक्षस भी होते हैं, और इसी सृष्टि पर भगवान भी होते हैं, जिसे ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। तो ऊंचे से ऊंचे भगवंत की यादगार कोई होगी या नहीं होगी? क्या यादगार है? शिवलिंग तो त्रिमूर्ति के चित्र में क्यों नहीं बताया कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर है, देव ब्रह्मा, देव विष्णु और उनसे भी ऊंचे महादेव शंकर है, वो भी नहीं तो कौन है? है शिव बाबा, जो ब्रह्मा कुमारियां चित्र में दिखाती हैं कि पहले पहले इस चित्र का परिचय देना चाहिए। लिंग दिखाई दिया, उसके 32 गुण दिखाई दिए, कहती हैं कि ये निराकार के गुण हैं। अब गुण या अब गुण साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? तो वो कौन है, साकार है या निराकार है या आकारी है? यह तीनों ही नहीं है? साकार को याद करें, निराकार को याद करें या आकारी को याद करें? क्योंकि पतित भी तब बनते हैं जब दो का संग होता है, कम से कम, या अकेले पतित बनते हैं है? प्रवृत्ति में पतित बनते हैं और प्रवृत्ति में भी पावन भी बनते हैं। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो प्रवृत्ति मार्ग की याद सिखलाएगा या निवृत्ति की याद सिखलाएगा? प्रवृत्ति की याद क्या है? अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री, जो पतितों को पावन बनाने वाली आत्मा है, वो पावन धाम से आती होगी है? कहाँ से आती है? पावन धाम से आकर पतित दुनिया में पाठ बजाती होगी, ज्ञान सुनाने के लिए मुख से पाठ बजाएगी, तो भी पतित दुनिया में ही बजाएगी। तो ये कैसे कहते हैं कि मुझे याद करो? तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मुझे एक के लिए कहा जाता है या दो के लिए चार के लिए कहा जाता है? तो कौन है वो साकार में निराकार? माना एक साकार आत्मा एक निराकार आत्मा, तो दोनों में कौन कहता है मुझे याद करो? है निराकार कहता है जो सदा निराकार है, निरंजन निराकार है वो कहता है। आत्मा कौन सी कहती है मुझे याद करो? है शिव की आत्मा कहती है मुझे याद करो। डकैत को याद करेंगे तो डकैत बनेंगे, चोर को याद करेंगे तो चोर बनेंगे। शिव की आत्मा निराकार तो क्या बनेंगे? निराकार बनेंगे। शिव की आत्मा 5000 वर्ष तक परम धाम में पड़ी रहती है तो हमारी निराकार आत्मा कहाँ पड़ी रहेगी? मंजूर है? हैं? आते तो हैं, लेकिन कहते कौन है मुझे याद करो? अरे कहने वाली एक आत्मा होगी या दो आत्माएं साथ साथ गीत गाएंगी मुझे याद करो, दो तरह की आवाज निकालेंगी?
हैं? मनुष्य व्यक्ति का भाव कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सदा कायम जो है इस धरती पर वही रहती।
इन्होंने एक नई बात बता दी कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो जो सदा कायम इस सृष्टि पर शिव बाबा है वो परमधाम में भी सदा कायम रहता है क्या? बताओ बताओ जल्दी बताओ। है परमधाम में तो नहीं रहता है, वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, जिसके लिए गीता में भी बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं होता, और जो झूठा है वो आज है कल नहीं होगा। जैसे भारत खंड है इस सृष्टि पर सदा है या कभी लोप हो जाता है? सदा है। और दूसरे धर्म खंड हैं, चीन जापान बौद्धी धर्म खंड, अफ्रीका अरब देश इस्लामी धर्म खंड, यूरोप अमेरिका क्रिश्चियन धर्म खंड, ये आज से 2500 वर्ष पहले इनकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर समाये हुए थे ही नहीं। तो सत्य हुए या असत्य हुए? असत्य हुए। और भारत? भारत पहले भी था, सत्ययुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी, और अभी संगम युग में भी। अंत तक भारत रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। दूसरे देश अंत तक नहीं रहेंगे, संगम युग के अंत तक दूसरे देश रहेंगे नहीं रहेंगे? कौन सा देश? भारत देश रहेगा। ये नाम क्यों दिया भारत देश? है ये अविनाशी खंड क्यों हुआ भारत देश? क्योंकि ये भारत खंड ही है जहाँ भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी सदा प्रज्वलित रहती है, ज्ञान माने जानकारी। काई की जानकारी? झूठ की नहीं, काई की सत्य की जानकारी। इस भारत खंड में सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक रहती है, इसलिए ये भारत खंड अविनाशी खंड है। सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। तो जो सत्ता देश भारत खंड है वो तो जड़ है या चैतन्य है? तो जड़ कहता है, जड़ तो बोलेगा कैसे, आवाज ही नहीं करेगा। चैतन्य की भी परिभाषा बताई है भगवान ने, क्या परिभाषा बताई है? बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो जरूर भारत खंड में कोई आत्मा है जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक बोलती चालती है। क्या मुख वाली है, ज्ञान सुनाने वाली है, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ऑल राउंड पार्टधारी ऐसा है जो ज्ञान युक्त ही है। सतयुग में देवता है तो भी ज्ञान का जो सार है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, उस रूप में टिका रहता है या नहीं है? त्रेता में भी, द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है, जहाँ दो दो धर्म, दो दो राजाएं, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं, तो भी ज्ञान की रोशनी में टिका रहता है या अज्ञान युक्त हो जाता है? है, टिका रहता है। किस रूप में? सतयुग त्रेता में तो देवता के रूप में, और द्वैतवादी द्वापर युग में किस रूप में टिका रहता है? अरे कोई रूप होगा या नहीं होगा? है वो चैतन्य जो आत्मा है, उसका कोई रूप होगा या नहीं होगा? हा? कोई रूप नहीं है, मनुष्य रूप है। कौन सा मनुष्य रूप? राजा विक्रमादित्य। बाबा ने तो बोला है, भगवान कहते हैं कि द्वैतवादी द्वापर युग से जो भी राजाएं होते हैं वो सब बुद्धू होते हैं, विकारी होते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी होती है, विकारी होती है। द्वापर युग के राजाओं का गहन है कि उन्होंने संगम में रह करके तप कर राज उपाया। क्या? आत्मिक स्थिति की तपस्या करके राज्य पाया। तप कर राज और फिर राज कर सतयुग त्रेता में क्या पाया? नरका। जब राजा बनते हैं द्वापर में तो नरक में जरूर जाते हैं। क्यों भाई? नरक, नरक में क्यों जाते? स्वर्ग में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि द्वापर युग से जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं आते हैं वो नर हैं या स्वस्थिति में रहने वाले सदाशिव हैं? हैं नर हैं। तो नर क्या करेगा? नर नरक बनाता है। सदा स्वस्थिति में रहने वाला जो भगवान है वो स्वर्ग बनाता है। तो जो चैतन्य भारत है वो द्वापर युग से नर रूप बन जाता है। तो कोई नाम रूपधारी होगा ना? नहीं होगा? कौन होगा? हैं? हैं? गीता में ही लिखा हुआ है, व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। वो ही वो व्यक्ति है दाढ़ी मूछ वाला नर। वो ही ब्रह्मा है, ब्रह्म नाम रूपधारी, जो आत्मा सतयुग त्रेता में जन्म लेते लेते द्वापर के आदि में क्या बन जाती है? वी आस। वी माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाती है। का धंधा करने के लिए है? क्या विशेष धंधा करने के लिए है?
लिखने के लिए
शास्त्रों में तो लिखा है कि लिखने वाले गणेश थे। लिखने वाले कौन थे? गणेश। अब बोलने वाला व्यास था। जितने भी धर्म पिताएं आए द्वापर से उन्होंने अपने धर्म शास्त्र की बातें बोली हैं या लिखी हैं? है बोली हैं। कोई भी धर्म पिता ने लिखा नहीं धर्म ग्रंथ। क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखे, गुरु नानक ने धर्म ग्रंथ वो क्या गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने बाद में लिखा पट्टी की। तो जो बाद में लिखते हैं वो कुछ गलती कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बस वहीं से मिक्सरिटी शुरू होती है और धर्म का धारणाओं का रूप बदल जाता है। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, उसमें एक बूंद विकारी सांप की डाल दी जाए, सांप बड़ा विकारी होता है ना, तो सारा दूध क्या हो जाएगा? मिक्सर की से क्या हो जाता है? है विष हो जाता है, जिस विष से वैश्य बन जाते हैं, वैश्या बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वैश्य या वैश्या। जैसे सतयुग त्रेता में जो देवी देवताएं होते थे वो एक से प्यार करते थे। बाबा ने चित्र बनवाई दिया लक्ष्मी नारायण का, उनके बच्चों का, राधा कृष्ण का। राधा की आंख कृष्ण में डूबी थी और कृष्ण की आंख राधा में डूबी थी। चलो ये तो ज्ञान इंद्रियों की बात हुई, श्रेष्ठ इंद्रियों की बात हुई, लेकिन द्वापर युग से जो देवताएं हैं वो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले बन जाते हैं या नहीं बन जाते? भ्रष्ट माने निचली। चलो बन जाते हैं। आचरण करते हैं परंतु द्वापर हो या कलयुग हो, भगवान बाप कहते हैं पतित तो सब बनते हैं। है? देवताएं पतित बनते हैं कि नहीं? है? बनते हैं, पतित बनते हैं तो कलाएं जन्म जन्मांतर कम होती जाती हैं। हाँ, शेष इंद्रियों से पतित बनते हैं। ज्ञान इंद्रियों में भी श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी हैं? आंख से पतित बनते हैं जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रिय, तो भी नीचे गिरते हैं। कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं। फिर जब और ज्ञान इंद्रियों से पतित बनते हैं तो तेजी से कलाएं कम होती हैं। ये तो फिर भी श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, लेकिन द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से पतित होना मनुष्यों का शुरू हो जाता है। और भ्रष्ट इंद्रियों में भी इस्लाम धर्म जब आता है तो पतितों की लाम लग जाती है इस धर्म में। किस धर्म में? इस्लाम में लाम लग जाती माने लाइन लग जाती है, संख्या बहुत बढ़ जाती है पतितों की। क्यों? क्यों? इसलिए कि इस्लाम धर्म वाले और उनका धर्म पिता भ्रष्ट इंद्रियों से भी व्यभिचारी बनते हैं। क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से एक में आचरण करने वाले नहीं बनते। एक से इंद्रिय का सुख लेने वाले नहीं बनते। उनकी धारणाओं में ये नूद है। क्या है? कि अनेकों के साथ पतित बनते, उनके धर्म में नूद है। कम से कम जीवन में चार तो जरूर चाहिए। तो व्यभिचारी हुए ना, और विविचार से विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ते जाते हैं। वो तो हुआ द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया का, कलयुगी दुनिया का अव्वल नंबर धर्म पिता, तो सबसे पावरफुल हुआ ना द्वैतवादी दुनिया में। जब वो सता ही ये हाल है तो उसके बाद जो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आते होंगे वो ज्यादा ही विषय विकारी बनेंगे, ज्यादा ही पतित बनेंगे या पावन बनेंगे? है ज्यादा ही पतित बनते हैं। तो जब धर्म पिताएं ही पतित बनते हैं तो उनको फॉलो करने वाली प्रजा कहो रचना कहो वो भी पतित बनती है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। किसे याद करो? मुझे याद करो। मैं उन धर्म पिताओं में से नहीं हूं। किन धर्म पिताओं में से? जो पतित बनते हैं। तो किसने कहा मुझे याद करो? बताओ। अरे अब तो बोलो किसने कहा? हैं? शिव बाप ने कहा। शिव बाप जिसकी बिंदी का नाम शिव है, उस बिंदी आत्मा ने कहा है? शिव बाबा ने कहा? राम वाली आत्मा? गड़बड़ गड़बड़ करते। कभी कहते एक राम वाली आत्मा ने कहा, कभी कहते शिव बाप ने कहा जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर का नाम होता ही नहीं क्योंकि उसको शरीर ही नहीं होता। शिव बाबा ने कहा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो शिव बाबा ने कहा तो शिव बाबा नाम कब पढ़ना चाहिए? है जब आए तो 36 में आया। कहते हैं 1936 में शिव बाबा आया तो पतित से पावन बनना शुरू हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए? अरे अगर पतित से पावन बनना शुरू हो गए तो यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की सृष्टि का विनाश क्यों हो गया? शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा ने सृष्टि रची, उनको पसंद नहीं आई तो क्या कर दिया? खलास कर दिया। यज्ञ के आदि में सन 36-37 में जो ब्राह्मणों का संगठन तैयार हुआ था वो 1947 से पहले ही वो संगठन पूरा पूरा टूट गया या रह गया? टूट गया। नया संगठन शुरू हुआ। हुआ तो ब्रह्मा के द्वारा ही, लेकिन अव्वल नंबर ब्रह्मा के द्वारा हुआ या नंबर दो के ब्रह्मा के द्वारा या नंबर तीन ब्रह्मा के द्वारा? जो नंबर वार ब्रह्मा है उनका नंबर लग गया तो दादा लेखराज का नंबर लगा। 1947 से नया संगठन शुरू हुआ, संगठन का नाम क्या पड़ा? है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अम्मा की कुमार कुमारी बने, चलो बड़ी अम्मा ब्रह्मा के कुमार कुमारी बने तो कोई पूछेगा तुम बार बार अपनी अम्मा का नाम क्यों बताते हो? हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। जब पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी है। लोगों को शक तो होगा ना कि बार बार अपनी अम्मा का नाम क्यों बताता है, बाप का नाम क्यों नहीं बताता। अरे बिना बाप के अम्मा पैदा कर लेगी है? नहीं, जो सृष्टि होती है वो तो प्रवृत्ति से होती है ना, अकेले से कैसे हो जाएगी। तो जहां जहां ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बन रहे हैं वहां लोगों को शक हो जाता है कि अम्मा का नाम बताते हैं बाप का नाम नहीं बताते हैं। कुछ विशेष हैं क्या, कुछ न कुछ विचार है। वैश्यालय के वासी हैं या शिवालय के वासी हैं? हैं? विशेष हैं, वैश्यालय के वासी हैं। और वैश्यालय के वासी हैं तो संगम युग में तो स्थापना भी होती है नए संगठन की और फिर विनाश भी होता है। तो बताओ जो दूसरी बार ब्राह्मणों के नए संगठन की दुनिया की स्थापना हुई सन 47 में, उसका विनाश हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। फोटो खींचो इनका सबका। उन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास पहुंचे तब से विनाश शुरू हुआ, 76 से विनाश शुरू हुआ। क्यों? इसलिए विनाश शुरू हुआ कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। किसका प्रत्यक्षता वर्ष? बाप का। वो बाप जो इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। उसका काम क्या है? सारी मनुष्य सृष्टि के बाप का काम क्या है, असली काम क्या है? है उस बाप का जो सन 76 से प्रत्यक्ष हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जिसकी यादगार में मनाया गया, बेसिक ब्राह्मणों ने भी मनाया और एडवांस ब्राह्मण भी मनाते हैं। कौन सा वर्ष? 1976। तो उस बाप का जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का, विश्व धर्मों का ग्रैंड फादर है, और धर्म पिता है तो ग्रेट फादर है। क्या? ग्रेट माने महान। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है, और वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। सभी धर्मों का ग्रैंडफादर है, धर्म पिताओं का भी क्या है? बाप है। धर्म पिताएं भी एडम आदम आदि देव को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो मानते हैं, सृष्टि के आदि में मानते हैं या मध्यंत में मानते हैं? उनकी बुद्धि में कब की बात बैठी हुई है एडम आदम की? सृष्टि के आदि की बैठी है ना, है ना? तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। माना जिस बिंदी का नाम शिव है उसको शरीर है ही नहीं, उसकी आत्मा रूपी बिंदी का ही नाम शिव है, वो नहीं कहते। अरे चुप, आत्मा को बाप नहीं कहते, मुझे याद करो।
आत्मा का बाप को ही याद करो कहते हैं,
वो कहते मुंह है उनको। हाँ हाँ,
प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना,
प्रजापिता के मुख से कहते हैं ना, तो दो हुए ना, है बात एक ही है, माने एक ही आत्मा है। अच्छा बताओ एक ही आत्मा कैसे? हाँ, कि जिस मुख से कहते हैं उस मुखधारी आत्मा की, उस शरीरधारी आत्मा की भी स्टेज कैसी बन जाती है? जब बाप समान बन जाती है तब की बात है, बाप नहीं बन जाती है। क्या बन जाती है? बाप समान बन जाती है। जैसे हिस्ट्री में राजाए हुए, राजाओं के बड़े छोटे बच्चे भी होते थे, तो राजा ही किसको देते थे? बड़े बच्चे को। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग में भगवान से शुरू हुई। भगवान जो कर्म करते हैं वो सारी दुनिया को वही कर्म करने पड़ते हैं। गीता में ऐसे लिखा हुआ है। तो भगवान निराकार को भी कहा जाता है, भगवान साकार को भी। सगुण ही निर्गुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। जब एकाकार हो जाते हैं तो नाम पड़ता है शिव शंकर भोलेनाथ। एक का नाम पहले एक का नाम बाद में क्यों, जब एकाकार हो गए? एकाकार क्यों? नहीं, जरूर उन दोनों में एक रचयिता है और एक रचना है। जो शिव बाप है जब परम धाम से आते हैं तो वो बाप जिसके पीछे पीछे आते हैं, किसके पीछे आते हैं? उनकी बुद्धि रूपी आत्मा किसके पीछे भागती है? है मनुष्य सृष्टि के बाप के पीछे भागती है, आत्मा के पीछे भागती है ना। तो वो आत्मा शिव बाप जो परम पुरुष कहा जाता है, पुरुष माने आत्मा, कैसी आत्मा? परम, बड़ी से बड़ी शक्तिशाली आत्मा, सर्वशक्तिवान आत्मा। वो परम पिता जिसका कोई पिता नहीं, वो किसके पीछे भागता है? हैं? मनुष्य शक्ति के बाप के पीछे भागता है। तो कौन आशिक हुआ और कौन माशूक हुआ? हैं? शिव बाप आशिक हुआ और जिसके पीछे भागा वो मासूक हुआ। तो दुनिया में भी क्या होता है? हैं? सृष्टि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो यहाँ से शुरू होती है। एक आशिक बन के पीछे पीछे भागता है है, किसके पीछे भागता है? मासू के पीछे भागता है। तो गीता में लिखा हुआ है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। वर्तमान माने मन मार्ग, दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे मार्ग का ही अनुगमन करते हैं। क्या? किसका अनुगमन करते हैं? मेरे ही मार्ग का, जिस रास्ते पर मैं चला हूँ उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है। तो वो सुप्रीम फादर सुपरमेसी, सब शक्तियों की सुपरमेसी जिसमें है, वो जिस मासूक के पीछे भागता है, तो दोनों में पावरफुल कौन है? जिसके पीछे भागता है वो, या जो भागने वाला है वो पावरफुल है? तो एक के पीछे दूसरा भागेगा, एक मासूक है एक आशिक है, आशिक पावरफुल होता है तो मासूक को पकड़ेगा या छोड़ देगा? आ? पकड़ेगा ना, पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? सिर्फ बिंदु रूप आत्मा को पकड़ता है या आत्मा के साथ साथ शरीर को भी पकड़ लेता है? आत्मा को भी पकड़ता है और जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसके ऊपर भी कंट्रोल करता है और शरीर रूपी रथ को भी कंट्रोल कर देता है, उसे माता बना लेता है। धरणी को माता कहा जाता है, जो धारण करती है। किसको धारण किया? सर्वशक्तिमान को धारण कर लिया। क्या? जैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, रामायण में, कि शिव का धनुष था, सीता के घर में रखा हुआ था, उस शिव के धनुष को जिसको कहा जाता है चाप, शंकर चाप जहाज जी चढ़े उतर पार नर, माने शंकर का शरीर रूपी चाप कहो, शरीर रूपी रथ कहो, वो जहाज के मुआफिक है, बड़ा जहाज। शास्त्रों में उसका नाम है चंद्रकांत वेदांत जहाज। यही चढ़ी उतर है पारण, जिस पर चढ़ करके मनुष्य संसार सागर, जो विषय सागर है, उससे पार चले जाते हैं। कि डूब जाते हैं, पार चले जाते। दूसरे गुरुओं ने भी ऐसे ही लिख दिया, नानक चाप जहाज। नानक ने अपने को वो चाप बताई दिया। तो मनुष्य गुरु तो नहीं चाप हैं, ऐसे रथ नहीं हैं। चाप धनुष को भी कहा जाता है। क्या? धनुष, उसको जितना लचीला बनाना चाहो खींच के मोड़ सकते हैं कि नहीं मोड़ सकते? मोड़ सकते। तो वो शरीर रूपी रथ ऐसा है कि पुरुषार्थ के रास्ते में बहुत मुड़ जाता है। लचीला है या टाइट है? पुरुषार्थ के रास्ते में वो जितना लचीला है, जिस लचीलेपन के कारण ही शिव बाप उस रथ का आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करनी है और पुरानी दुनिया का तो ये छोटा मोटा काम है क्या है। चलो स्थापना कर भी ली, जैसे धर्म पिताएं अपने धर्म के संगठन की स्थापना कर लेते हैं, परंतु क्या नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं? नहीं करते। अब भगवान को क्या करना है? पुरानी दुनिया का पूरा विनाश भी करना है, जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सके। और स्थापना के बाद नई दुनिया की पालना भी करनी है, तीनों काम करने ऐसा रथ चाहिए। क्या जिसकी यादगार बनाते हैं त्रिमूर्ति हाउस, ऐसा घर शरीर रूपी है त्रिमूर्ति हाउस, जिसमें तीनों मूर्तियों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं काम करती हूं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी पार्ट बजाने वाला काम करता हो चंद्रमा के रूप में, सदा शिव की आत्मा भी उसमें प्रवेश करके त्रिनेत्री के रूप में कार्य करे, और शरीरधारी की अपनी आत्मा भी उसमें काम करती है, तो त्रिमूर्ति हाउस हुआ ना। उसकी यादगार में त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखते हैं। कैसा मार्ग? ऐसा परम प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मार्ग, ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर दुनिया की सारी मनुष्य आत्मा उसी रास्ते पर चले, जिस रास्ते पर चलने की उसने परंपरा डाल दी। किसने? किसने है? शिव बाबा का नाम क्या है जिसमें तीनों की बात आ जाती है? त्रिमूर्ति शिव। क्या नाम है? त्रिमूर्ति शिव। वो त्रिमूर्ति शिव जब आता है तो कौन से हाउस में आएगा? चैतन्य हाउस है? जो सृष्टि के अंत में भी त्रिमूर्ति हाउस 100% पहला स्थापनाकारी ब्रह्म, परम ब्रह्म, और मध्य में पुरानी सृष्टि का विनाश करने वाला शंकर, और अंत में जो सृष्टि स्थापन हुई है विनाश होने के बाद जो भी अच्छे अच्छे बचे उस संगठन की पालना करने वाला विष्णु भी बनता है। बताओ, कभी सुना कि शंकर जो कहा जाता है वो ही अंत में त्रिमूर्ति शिव बनता है? आदि में भी, सृष्टि के आदि में, रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में भी क्या था? त्रिमूर्ति हाउस था, जिस हाउस में शिव बाप प्रवेश करते। तो वो कहता है चैतन्य त्रिमूर्ति हाउस कि मुझे याद करो। सिर्फ निराकार कहता है, है? नहीं, त्रिमूर्ति हाउस जिसे कहा जाता है संपन्न, यज्ञ के आदि में भी वो त्रिमूर्ति शिव उसी त्रिमूर्ति हाउस में प्रवेश करता है, और सब धर्म की स्थापना का कार्य करता है। परंतु यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था, जब अज्ञानी नहीं था तो सफलता होगी है? सफलता नहीं हुई। जिस त्रिमूर्ति हाउस में राम वाली आत्मा के घर में प्रवेश किया वो फेल हो गया या पास हुआ? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान था ही नहीं। तो पहली बार ब्राह्मणों के संगठन का, ब्राह्मणों की नई दुनिया का पहली बार विनाश हुआ, और दूसरी बार कब हुआ है? सन 76 में ब्रह्मा जो नामधारी दादा लेखराज की आत्मा थी उसके द्वारा जो संगठन तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उससे पहले जो संगठन था उसका नाम क्या था? क्यों? वो भी तो ब्रह्मा के द्वारा हुआ, उसका नाम भी तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ना चाहिए, वो नाम नहीं था। क्या नाम था? ओम मंडले, एक अक्षर है, है? तीन अक्षर हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन है या तीनों अलग अलग हैं? कॉम्बिनेशन है। तो जिस हाउस में तीनों कार्यों का कॉम्बिनेशन है वो हाउस के नाम पर त्रिमूर्ति शिव अपना कार्य नई सृष्टि का आरंभ करते हैं, जो आदि सो अंत। वही आत्मा जब नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है वहां भी वो आत्मा कार्य करती है। कार्य तो वो आत्मा करती है परंतु उसमें कार्य करने वाली जो दो और मूर्तियां हैं उनमें से एक मूर्ति पुरुषार्थ में संपन्न होकर कार्य करती है या अधूरा से पूर्ण बनने का पुरुषार्थ करने के लिए कार्य करती है, वो टाइम कौन सा? चैप्टर फिर कौन सा? जो बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबर वार 40 से 50 वर्ष का टाइम लगता है, तुम बच्चों को, इनको नहीं, किनको? इनके फॉलोअर्स को नहीं, किनको? तुम बच्चों को। इसका मतलब वो टाइम कब शुरू होता है? है 2008 2017-18 वो टाइम पर वही आत्मा जो त्रिमूर्ति हाउस का कार्य करती है ऐसे शरीर रूपी घर का कार्य करती है वो 40 वर्ष में संपन्न बन जाती है। संपन्न बनती है तो नई राजधानी होती है या पुरानी राजधानी होती है? बाप भी कहते हैं मैं जब आता हूं मेरे आने की जो यादगार है महाशिवरात्रि, जब घोर अज्ञान की महान अंधकार की रात्रि होती है, कब? 36 में भी नहीं, 47 में भी नहीं, 76 में भी महान अंधकार की रात्रि नहीं होती है, क्योंकि 76 में भी मेरे बहुत से बच्चे हैं रुद्रमाला के मण के जो मेरे को पहचानती है। एक ऐसा टाइम आता है जब दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य भी अज्ञान अंधकार में रहते हैं, मेरा बाप कौन, मैं कौन। और जो ब्रह्मा पुत्र अपने को कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, अथवा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं अपन को, वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते हैं। माया उनको भी छोड़ती नहीं। क्या माया सर्वशक्तिवान है? है? सर्वशक्तिवान है? नहीं है? है तब तो आधा राज्य बटाई देती है। 5000 वर्ष की जो दुनिया है उसमें कितने टाइम का राज्य बटाई लेती है? 2500 वर्ष का राज्य बटाई लेती है। 2500 वर्ष माया रावण का राज्य चलता है। लेकिन ऐसी पावरफुल कब बनती है? है? जब प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्रमाणे प्रतिष्ठ कृति माने रचना, जो भगवान बाप की प्रतिष्ठ रचना है, प्रकृति कहो, बड़े से बड़ी माँ जगदम्बा कहो, उससे हाथ मिलाई लेती है। जगदम्बा का पति कौन? जगत पिता। तो ठन ठन गोपाल रह गया, कौन? जगत पिता ठन ठन गोपाल रह गया। माया रावण ने क्या किया? राम की सीता चुरा ली। तो अकेला रह गया या प्रवृत्ति में रह गया? है? अकेला रह गया। अब अकेला नई सृष्टि स्थापन करेगा? है? करेगा। सृष्टि तो तभी तैयार होती है जब दो का मेल हो। है? तो दो का मेल तो अकेलेपन में होता नहीं। तो सन 76 से नई सृष्टि बनी क्या? है? नहीं बनी, नहीं बनी। जो बिंदु बिंदु आत्मा समझने वाले आत्माएं हैं, आत्मा समझकर महामृत्यु के टाइम पर भी बिंदु आत्मा प्रैक्टिकल में बन जाते हैं, वो बिंदु बिंदु आत्मा पुरुष की स्त्री पुरुष जो रुद्र के समान कहे जाते हैं, रुद्र शंकर का नाम है, वो पुरुष स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्माएं, उनका संगठन बनना तैयार नहीं होता। तो ये क्यों कहते हो कि नई दुनिया बनना शुरू नहीं हुई? है? अरे नया संगठन बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? है? हुआ। लेकिन जो नया संगठन बनना शुरू हुआ वो सब पुरुष हैं या उनमें से कोई स्त्री चोला भी है? है? सब जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार वाले पुरुष हैं, कठोर हैं या माता की तरह कोमल स्वभाव वाले हैं? है? कठोर हैं। तो जो कठोर स्वभाव वाले पिता हैं, पुरुष हैं, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, भगवान बाप ने बोला। तो जो दुर्योधन दुशासन है, बहुत कठोर स्वभाव संस्कार के हैं, वो देवता ही नई दुनिया स्थापन कर सकेंगे? है? देवता ही दुनिया तो बना ही नहीं सकते। क्योंकि देवताएं तो बहुत भोले वाले होते हैं या तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, भोले वाले बुद्धू होते हैं, सारी शक्ति भोले बालों की, भोले बाप के भोले बच्चे। तो जिन भोले बच्चों को जब से उन्होंने अपने रूप को पहचाना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बचपन से लेकर उनको मां का प्यार मिला ही नहीं कि मिलता है, प्यार के भूखे रहते हैं कि प्यार मिलता है, है? प्यार के भूखे रहते हैं। तो जिन बच्चों को बचपन से ही प्यार नहीं मिलता माँ बाप का, वो स्वभाव संस्कार से कड़क हो जाएंगे या मुलायम स्वभाव संस्कार वाले रहेंगे? कड़क स्वभाव संस्कार के हो जाते। हाँ, कोई कोई बिरले बच्चे हैं। कैसे बच्चे? बिरले बच्चे हैं, फोटो में कोई कोई है जो अपना पूरा पोता मेल दुर्योधन दुशासन पने का भगवान बाप के सामने दे देते हैं। सच्चाई से कुछ भी छुपाए बगैर तो भगवान बाप को क्या प्रिय है? गॉड ट्रुथ कहा जाता है, सच्चाई को ही गॉड कहा जाता है, सत्य ही शिव है। क्या शिव भगवान क्या है? सत्य ही शिव है, उसको क्या प्रिय है? सच्चाई। तो जो दिल खोल करके सारी सच्चाई बाप के सामने रख करके एकदम बच्चे के मुआफिक नंगे हो जाते हैं, बाप उन सच्चे बच्चों को प्यार करेगा या झूठे बच्चों को प्यार करेगा? सच्चे बच्चों को ज्यादा प्यार करता है। ऐसे सच्चे बच्चे सच्चे खंड, जिसे सत्य युग कहा जाता है, उस युग की स्थापना में सहयोगी बनते हैं, और वो बच्चे बिरले हैं। कैसे बिरले? जैसे गीता में कहा, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्यति यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में वो जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें थोड़े निकलते हैं जो यत्न करते हैं काय के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, योग की सिद्धि। और यत्न करने वालों में भी कोई कोई निकलते हैं जो मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए नौ प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र गाये हुए हैं। कितने प्रकार के? नौ प्रकार के ब्राह्मण, नौ प्रकार के जो आस्तिक धर्म है भगवान को मानने वाले, उन धर्मों से सृष्टि के अंत में भगवान बाप आकर उन श्रेष्ठ बच्चों को खींचता है। हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं कि नहीं है? होते हैं। तो जो अच्छे से अच्छे बच्चे हैं हर धर्म के, उन बच्चों को भगवान बाप खींच करके ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बनाता है। परंतु जिन दिन धर्मों से खिंच करके आए हैं, अनेक जन्मों का संस्कार स्वभाव लेकर आए हैं संग का रंग का, उस संग के रंग के स्वभाव को कहो, उस संग के रंग के छिलके को कहो, जल्दी छोड़ देंगे या सब एक साथ छोड़ देंगे? अनेक धर्मों के स्वभाव संस्कार को धारण करने वाले बच्चे अनेक धर्मों से अंतिम जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनते हैं, अलग अलग कुरियों वाले, तो उनमें से कौन पहले सुधरेंगे? अच्छा, नौकुरियों को छोड़ दो, नौ धर्मों को छोड़ दो, षष्ठी रूपी वृक्ष में जो तीन मुख्य दिखाए गए हैं, एक ऐसा तना है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही गया है, एक ही धर्म में पक्के रहते हैं वो बच्चे। दूसरे ऐसे हैं जो षष्ठी रूप मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष में दाई ओर के भारतीय धर्मों में मुड़ जाते हैं, मुड़ते हैं कि नहीं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरे ऐसे हैं जो मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष की बाई ओर की डालियां हैं, बाएं हाथ वाली, बाया हाथ अच्छा है या दाया हाथ अच्छा है? दाया अच्छा और बाया खराब रास्ता, बाम मार्गी कहे जाते हैं। बाम मार्गी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि उल्टा रास्ता पकड़ते हैं, विचार का रास्ता पकड़ लेते हैं, इंद्रियों से क्या बन जाते हैं? विचारी बन जाते हैं। भारत माता का अनुगमन नहीं करते, जो भारत माता मात्र देश गाया जाता है, गायन किसका होता है, भारत माता का कि भारत पिता का? भारत माता का गायन होता है। तो वो बच्चे जब स्त्री चोला धारण करते हैं तो मोस्टली दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नई नई आत्माएं आती है ना ऊपर से, दूसरे दूसरे धर्म की, धर्म पिताओं की, तो जो नई आत्माएं आएंगी वो षष्ठी वृक्ष के नए पत्ते देखने में शोभनीक होंगे या बौड़े होंगे? शोभनीक, नए नए पत्ते होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। क्या बहुत? कन्याओं को भी और माताओं को भी कैसे लगते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं कि वो अपना धर्म ही भूल जाती, आराम से उन आत्माओं के आकर्षण में आ जाती है, प्रभाव में आ जाती है। और प्रभाव माने प्रभावित, माने प्रजा, उनकी प्रजा बन जाती है, पहली पहली प्रजा भी बन जाती है। पहली प्रजा कौन होती है? माता का रूप धारण करके उनकी प्रजा बन जाती है, धर्म पिताओं की प्रजा, उनके फॉलोअर्स की प्रजा। इन सब बातों की शूटिंग कहाँ हो रही है? है? रिहर्सल कहाँ हो रही है? संगम युग में। जो ऊंचते ऊंचे भगवंत है उसकी प्रजा नहीं बनते हैं, क्या उसकी बातों से प्रभावित नहीं होते, उसके रूप को नहीं पहचानते, उसके काम को भी नहीं पहचानते। न पहचानने के कारण जो जो नए नए शोभनी के होते हैं, बाद वाली आत्माएं जो सृष्टि में रूपी मंच पर जागृत हो जाती है, परमधाम में आत्माएं जड़ और नीचे आई जागृत, ऐसे यहां शूटिंग पीरियड में पहले अज्ञानी जड़ थे, फिर ज्ञान में आए तो जागृत हो गए। अपनी आत्मा को, अपने बाप को पहचाना सत्व प्रधान स्टेज में, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, कोई तो सत्सात्विक स्टेज में आदि से लेकर के अंत तक टिके रहते हैं सत्य बाप की याद में। ऊंचे ते ऊंचा करतार, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, जिसकी यादगार शिव के मंदिरों में दिखाई जाती है। किसके मंदिरों में? शिव के मंदिर। क्यों कहा? तो जड़ पत्थर के मंदिर जो बनते हैं, पत्थर की मूर्ति बनती है लिंग रूप, उसमें वो चैतन्य आत्माओं का बाप बैठता है क्या? है आत्माओं का बाप होता है? है होता है? है होता है कि नहीं? अच्छा, पत्थर की मूर्तियों में जो पत्थर के मंदिर बनाए जाते हैं, उनमें वो चैतन्य बाप आत्मा के रूप में पत्थर में बैठता है। अभी तो कह रहे थे आत्माओं का बाप नहीं बैठता, यादगार के रूप में बैठता है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर था, लिंगाकार पत्थर था ना, है जरूर पत्थर बुद्धि बना रहा होगा अंत तक। तो उस पत्थर बुद्धि में हीरा जड़ा हुआ था। कौन जड़ा हुआ था? हीरा। इसकी यादगार? शिव की यादगार। शिव पत्थर बनता है, हीरे वगैरह तो पत्थर होते हैं, हीरा पन्ना मोती नौ रतन पत्थर होते हैं कि नहीं? वो पत्थर बनता है। अरे तो क्यों कह दिया जो हीरा है वो उस आत्मा की यादगार है जो पत्थर बुद्धि बन जाती है हीरे की तरह? बताओ वो हीरा किसकी यादगार है? हैं?
अभी भी शिव बाप की यादगार।
शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, जिसका बिंदी का ही नाम शिव है, वो बिंदी शरीर में प्रवेश करती है तब अनेक संबंध और नाम बनते हैं। तो वो हीरा शिव बाप की यादगार है। कभी कहते है, कभी कहते नहीं है, है? किसकी यादगार है? वही साकार, हीरा साकार है, हीरे की बात हो रही है, हैं? वो हीरा साकार या निराकार? निराकार की यादगार है, जो सदा शिव है, जो निराकारी सदैव रहता है। इस विकारी दुनिया में आता है तो भी निराकारी, साकार शरीर में आता है तो भी निराकारी स्टेज में मन बुद्धि से रहता है, उसकी यादगार है हीरा। है हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो पत्थर बुद्धि बन जाता है क्या? हाँ, अंत में पत्थर बुद्धि बन जाता है। जो गायन है भक्ति मार्ग में, जब सत्व प्रधान भक्ति थी तो स्वर्ण लिंग बनाते थे। कैसा? बड़ा रूप साकार सोने का सच्चा रूप धारण करने वाला, फिर बाद में रजत लिंग बनाने लगे चांदी के, फिर बाद में ताम्र लिंग बनाने लगे और अंत में लौह लिंग पत्थर लिंग बन गए। तो पत्थर बुद्धि बनता होगा ना, है पत्थर बुद्धि तो बनता है, फिर भी हीरा कहा जाता है या हीरा नहीं कहा जाता है? तो हीरो पार्टधारी पत्थर बुद्धियों के बीच में भी हीरो पार्टधारी या नीची कोटि का पार्ट बजाने वाला है हीरो पार्टधारी। चारों युग पर काम तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत तुझे आ रहा क्या? उसका चारों युगों में प्रताप है हीरो पाटधारी का, सारे जगत में उजियारा करने वाला है सतयुग त्रेता में आत्मिक स्थिति के रूप में, संगम युग में भी आत्मिक स्थिति के रूप में, द्वैतवादी द्वापर युग में आत्मा जो है आठ कला वाली बनती तो है लेकिन फिर भी ज्ञान की रोशनी में रहती है या और मनुष्यों की तरह अज्ञान में आ जाती है? ज्ञान की रोशनी के लिए ही बैठती है, आस भी आस ज्ञान के लिए ही बैठी हुई है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में भी जब आत्माएं विशेष मनुष्य बन जाती है तो भी उन विशेष आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती रोशनी देने वाली ज्ञान की है या नहीं? सबसे जास्ती ज्ञान की रोशनी देने वाला है। और द्वापर में भी वो कलयुग में भी भले लोहे का युग आ गया, काला युग, काले कर्मों का युग, झूठ खंड जहां सब झूठ बोलते हैं, क्या नंबर वार झूठे होंगे या एक जैसे झूठे होंगे? उन नंबर वार झूठों में कोई अब्बल नंबर कम से कम झूठ बोलने वाला भी होगा या नहीं होगा? होगा जरूर। तो जो अंश मात्र झूठा रह जाता है वो लोहे का लिंग कहा जाता है, पत्थर लिंग, कालिमा दिखाई देती है। लोहे को जब अग्नि में डालते हैं, देखा कभी लोहे को जब अग्नि में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? है? लाल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे झंडे में वो जो लिंग रूप की यादगार है, कपड़ा कैसा दिखाया है? है? लाल दिखाया हुआ है, क्रांतिकारी रंग बन जाता है। क्या और मनुष्य आत्माएं भी संगम युग में भगवान से ज्ञान तो लेती हैं, लेकिन कोई भी आत्मा ज्ञान की क्रांति, क्या ज्ञान की क्रांति नहीं कर पाती? वो एक ही आत्मा है जो भगवान बाप के ब्रह्मा मुख से दी हुई वेद वाणी कहो ज्ञान वाणी कहो, उस वाणी में क्या ला देती है? क्रांति ला देती है। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही क्रांति लाती है या सब धर्मों के विश्व धर्मों में क्रांति ला देती है, दुनिया के सभी धर्मों में क्रांति ला देती है। महामृत्यु का जब समय होता है तो दुनिया की सभी आत्माएं उस ज्ञान की क्रांति में सराबोर हो करके आत्मिक स्थिति ऐसी धारण करती है कि वो सभी मनुष्य आत्माएं जहां से निकली है वही प्रवेश हो जाती है। बताओ, कोई बच्चा है कहां से निकलता है? अरे कहां से जन्म लेता है? माता से जन्म लेता है। माता के पेट में जब आत्मा रूपी बच्चा आता है तो अपने आप आ गया? माता ने क्रिएट कर लिया है, तो कहां से आया? अरे बच्चा कहां से आया? माँ से आया, बाप से आया। वो बाप है जो बीज डालता है, बीज चार पांच महीने तक छोटे से लेके बड़ा भ्रूण बनता है, जड़त रूप में हाथ पांव धारण करता है। जड़त में इंद्रियां होती हैं, फिर चार पांच महीने के बाद उसमें सोल प्रवेश करती है। ऐसे ही है ना? तो जब सोल प्रवेश करती है तब कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है, नहीं हुआ। ऐसे ही संचत्तर में वो बच्चा जो आत्माओं के बाप का पहला बच्चा है, कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप राम वाली आत्मा, नरसे नारायण बनने वाली आत्मा, वो प्रवेश होती है। तो उस समय की प्रवेशता को ये कहा जाता है कि बच्चे ने जन्म लिया, कहा जाता है? नहीं। सबसे जास्ती किसको पता चलता है? माँ के पेट में चुर्रपुर होती है तो उसी को पता चलेगा। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी कोई प्रैक्टिकल में माँ का पार्ट बजाने वाली है क्या? जो माँ का पार्ट बजाने वाली है वो साकार रूप में कोई शरीरधारी भी है क्या? क्या पार्ट बजाती है? जड़ शरीर का पार्ट धारी, जड़त्व में ही बुद्धि वाली। और उस जड़त्व में ही शरीरधारी में निराकारी चैतन्य आत्मा भी है जो बुद्धि की देवी कही जाती है। क्या? बुद्धि की देवी कौन है? जगदम्बा कही जाती है। कहते हैं सीता जब राजा जनक के राज्य में फूलों की वाटिका में गई तो संकल्प लेके आई, वाटिका में जिसको देखा ये संकल्प लेके आई कि वही मुझे प्राप्त हो, तो उसने पूजा की। किसकी? जगजननी की पूजा की। जगजननी जय जय उमा, जगजननी जय जय उमा। क्या नाम दिया? उमा। कौन है उमा? है जो सारी सृष्टि की माँ है, सारी मनुष्य सृष्टि की माँ। जैसे सारी मनुष्य शक्ति का बाप, वैसे माँ, वो माँ और बाप जब दोनों मिलकर के एकाकार होते हैं तो अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। तो वो माँ और माया, कौन माया, माया ज्यादा बुद्धिमान है या वो जगदम्बा ज्यादा बुद्धिमान है? माया ज्यादा बुद्धिमान है। वो किसी को आगे नहीं आने देना चाहती। क्या देखें, भगवान बाप से माया बेटी है ना, तो कभी बुद्धि में आता है माया, वो भगवान बाप कभी कभी कहती है मायापति, तो कैसी बेटी है भगवान की बेटी, कैसी है माया, माया बुद्धि में घुसी हुई है। ये मेरा बाप भी है और ये मेरा पति भी है। देखें मेरे सामने इससे ज्यादा प्राप्ति कौन करता है? तो किसी को आगे नहीं बढ़ने देती, सबके रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो जाती है, विघ्न बन करके। कौन से धर्म का इबादत घर है जो अपने इबादत का स्थान बनाते हैं तो दीवार खड़ी कर देते हैं? क्या खड़ा कर देते हैं? दीवार खड़ी कर देते हैं। कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म। जिस पूजा स्थल में वो बैठ करके अल्लाह मियां को याद करते हैं तो सामने किसको रखते हैं? दीवाल को सामने रख देते हैं। वो दीवाल सारी दुनिया के रास्ते में दीवाल बन करके खड़ी होती है, समझती है कि सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्ति का वर्षा मैं लूंगी, मेरे सामने दूसरा कोई सरेंडर, पूरा सरेंडर नहीं हो सकता, मैं किसी को सरेंडर नहीं होने दूंगी। तो बताओ ऐसी कोई चैतन्य शक्ति है ब्राह्मणों की दुनिया में, है या नहीं है? कौन है? है, है? एक है जो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि को मोड़ देती है, लेकिन जो भगवान बाप के आत्मिक स्वरूप धारण करने वाले बच्चे हैं, रुद्र बाप के रुद्रमाला के मणके हैं, पक्के पक्के उनकी बुद्धि को नहीं मोड़ पाती। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला माया थक चुकी है, माया तंग आ चुकी है। जब ये बोला तब हॉस्पिटलाइज हो गई, कामा में चली गई। आखिरी में जब देखा कि मैं नहीं जीत सकती हूं तो क्या किया? प्रकृति से हाथ मिला लिया, जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है। कैसी रचना? प्रकृति, कृति माने रचना, प्रा माने प्रकृष्ट, बहुत पावरफुल रचना है। माया इतनी पावरफुल नहीं है जो भगवान के बच्चों को जीत ले। या कम से कम प्रकृति पति को जीत ले तो क्या करती है माया, क्या करती है जो रुद्रमाला में माता है प्रकृति प्रकृष्ट रचना भगवान की पहली रचना प्रकृति पहली रचना या लक्ष्मी वाली आत्मा पहली रचना या माया बेटी पहली रचना प्रकृति पहली रचना। क्योंकि भगवान जब आते हैं अपना धाम छोड़ करके तो किसके पीछे भागते हैं, प्रकृति के पीछे भागते हैं है? है? वो प्रकृति का पुतला नहीं है, है? नाम ही दिया है परम ब्रह्म, ब्रह्मा नामधारियों में परम है, प्रकृति का पुतला तो है लेकिन कैसी माता है, है? परम रूप वाली, परम सच्चाई को धारण करने वाली, परम कल्याणकारी मनुष्यात्माओं के बीच में कैसी है, है? बाप परिवार में सबसे जास्ती कल्याणकारी होता है ना, है? कल्याणकारी। तो वो प्रकृति है या नहीं है, प्रकृति का पहला रूप है या नहीं है? लेकिन प्रकृति का जो पहला रूप है इस दुनिया में पतित दुनिया में जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, उन बुद्धिमानों के बीच में बुद्धिमान नर अर्जुन गाया हुआ है या नहीं गाया हुआ है, है? कैसा अर्जुन, कैसा सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, कैसा ज्ञान का अर्जन करने वाला है? इससे जास्ती ज्ञान का अर्जन कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकता। तो चैतन्य होगा या पांच जड़ तत्वों का पुतला मात्र होगा, है? चैतन्य आत्मा है परंतु जो उसका पुतला है वो परम ब्रह्म है। जैसे दादा लेखराज का पुतला कैसा था, लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा आकर्षण मूर्त था या नहीं था, है? तो भगवान जो निराकार ज्योति बिंदु है वो अंदर की चीज है या बाहर की चीज है, है? अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है? जो अंतर्मुखी होता है वो अंदर को पहले देखता है या बाहर को पहले देखता है? अंदर को देखा। जिसका आधार लिया, परंतु जिसको देखा वो पहले पहले तो उसका बच्चा है ना, किसका, सुप्रीम सोल का बड़ा बच्चा है ना। तो जो बड़ा बच्चा है साकार है या निराकार है, साकार है। साकार के लिए बाप की आस क्या होती है, साकार बच्चे के लिए है? बाप की दुकान संभाले और है?
हाँ, बाप जो है शांति का सागर गाया हुआ है, सुख का सागर गाया हुआ है, तो बच्चा भी जन्म जन्मांतर कैसी स्थिति में रहे, हर बाप क्या चाहता है, मेरे बच्चे जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहे या अशांत दुखी रहे। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम में बाप आते हैं, जिस आत्मा को अपना बड़ा बच्चा समझते हैं, उस बच्चे के लिए आस रहती है कि बच्चा सुखी रहे। सुख निवृत्ति में रहेगा या प्रवृत्ति में होने के बाद जाति सुख रहेगा है? तो दुनिया के बाप क्या करते हैं? अरे बताओ, अपने बड़े बच्चे के लिए क्या करते हैं? है, प्रवृत्ति तैयार करते हैं ना, प्रवृत्ति में रहना कंपल्शन कर देते हैं या नहीं है? कंपल्शन कर देते हैं। तो शिव बाप भी अपने बड़े बच्चे के लिए यही चाहता है कि बच्चा जन्म जन्मांतर क्या रहे, सुखी रहे। और जो सुख है वो ब्रह्मचर्य जीवन जब तक रहता है, अकेला जीवन, तब तक जास्ती सुख है। ये प्रवृत्ति में रहने के बाद सुख होता है, है? प्रवृत्ति में रहने के बाद ही सुख होता है, चाहे देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, निवृत्त रहेंगे तो सुख महसूस करेंगे, उतना सुख महसूस। तो बाप की भी आस है कि बच्चा सुखी है, तो बच्चा जो है मनुष्य सच्चिता पिता है, साकार पिता है
या सदाकाल निराकार है? साकार है, तो साथी भी कैसा चुनेगा? है, साकार चुनेगा। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसा साथी चुनता है जो साथी कभी भी पक्का पक्का निराकारी रूप धारण नहीं करती है। क्या अंत में क्या रूप बन जाता है? स्त्री चोले का अबला या सबला? अबला बन जाती है। ऐसी आत्मा को चुना, जड़त्वमयी तत्वों वाली, जो आत्माएं बाप को पहचान करके भी फिर बाप को भूल जाती है। उनको जड़त्वमयी बुद्धि वाला कहें या चैतन्य बुद्धि कहें? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। तो उनमें नंबर वन आत्मा कौन है? जगदम्बा का साथ देता है। पहले पहले बाप देवी कही जाती है, बाप की बच्ची का नाम बाक देवी। कौन? वार्ता की, वाणी की देवी, जगदम्बा, सरस्वती जगदम्बा कहते हैं ना। तो वो जगदम्बा को चुनता है वाचा चलाने के लिए, वाचा चलाने वालों की बाक देवी बनाने के लिए। और कोई भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है जो ब्रह्मा के साक्षात्कारों को वाचा के द्वारा मनुष्य सृष्टि के बाप के सामने रख सके। क्या इतनी हिम्मत कोई नहीं करती? ये सारी वसुधा में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, वो सब वसुधा व कुटुंबकम, वसुधा रूपी कुटुंब के परिवार के भांति हैं। लेकिन उनमें से कोई भी इतना हिम्मत नहीं कर पाता, जिसको साक्षात्कार हुआ वो भी हिम्मत नहीं कर पाता कि सामने जाकर के वो अपना अनुभव सुनाए। कौन हिम्मत करती है? जगदम्बा हिम्मत करती है। वाचा से जैसा सुना है दादा लेखराज के द्वारा वैसा ही हूबहू सुनाई देती है, सुनाती है और फिर सुनती भी है। क्या क्या कार्य करती है? सुनाती भी है साक्षात्कारों को और फिर जिसको सुनाती है वो सुनाने के साथ साथ सुनता है या नहीं? सुनता भी है और समझता भी है या नहीं? समझता भी है। वो खुद समझता है कि उससे भी ज्यादा समझ कोई और आत्मा में है। कौन? शिव। मनुष्य सृष्टि में वो सबसे जास्ती समझू है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान नर अर्जुन गाया हुआ है, लेकिन उससे भी जास्ती बुद्धिमानों की बुद्धि कौन गाया हुआ है? भगवान बाप। तो वो उसमें प्रवेश कर जाता है। काहे के लिए प्रवेश करता है? अरे बाप सृष्टि रचने के लिए किस में प्रवेश करता? माता में प्रवेश करता। बाप की जो मूल शक्ति है उसे कहा जाता है सत्व। क्या? सत्व। और उस सत्व को धारण करने वाली जो सच्ची माता है उसे कहा जाता है सती। क्या कहा जाता है? सती। तो जो सत्य को धारण करने वाला बाप है वो सत्य बाप उस सत्य को माने ज्ञान के बीज को माता में धारण कराता है। कौन सी माता? जिसको कहा जाता है मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म रखता हूँ, परम ब्रह्म। सुनने सुनाने मात्र के लिए प्रवेश करता है या समझने और समझाने के लिए प्रवेश करता है? है? समझने और समझाने के लिए प्रवेश करता है। और सुनता कौन है? पहले पहले जब इतना सुनता है, है? ब्रह्मा सुन, परम ब्रह्म सुनता है। पहले पहले कौन सुनता है? जो ज्ञान का बीज डाला उस ज्ञान के बीज को ज्ञान तो मुख से ही सुनाया जाएगा। मुख वंशावली है या कुख वंशावली, गोद वंशावली, तो मुख से जो सुना हुआ है वो सबसे पहले कौन सुनता है? वो माता जो बड़ बोली है, वाक देवी, वाचा की देवी, वो सुनती भी है और दूसरों को सुनाती भी। तो वो ही है प्रकृति। क्या? जगत पिता जगत पति की पहली रचना कौन है? जगदम्बा। उस पहली रचना को माया हाथ कर लेती है। कैसे? कैसे? हाथ मिला लेती है। उसका हाथ बुद्ध रूपी अपने बुद्ध रूपी हाथ में जकड़ लिया। क्यों? जब सबसे पावरफुल प्रकृति है परम पिता की रचना, तो उसको कोई ने हाथ क्यों कर लिया? कैसे कर लिया? वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल तो है लेकिन पंच तत्वों से बने जड़ शरीर के आधार पर पावरफुल है या आत्मिक रूप में पावरफुल है? आत्मिक रूप में पावरफुल है, है? पंचभूतों का पुतला है, नंबर वन साकार में जगदम्बा। इसलिए जगदम्बा के जो चित्र देखे होंगे, देखे कभी बंगाल में देखना कैसे बनाते हैं, सुंदर या भौड़ा चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी आंखों वाला है, तो दिखाया है कि वो पंचभूतों से बना हुआ जो प्रकृति का चूल्हा है साकार में, वो बहुत सुंदर वाचा के आधार पर बहुत सुंदर और शरीर के आधार पर भी, पंच तत्वों के आधार पर भी बहुत सुंदर। वो माता को क्या बनाया साकार ने? पहली साकार रचना बनाया, प्रकृति का जो पावरफुल रूप है जगदम्बा, उसको आधार बनाया। किस बात के लिए? किस बात के लिए आधार बनाया है? सृष्टि रचने के लिए। तो जो सृष्टि रची जाती है वो सृष्टि पहले जड़ की रची जाएगी या चैतन्य की रची जाएगी? है, चैतन्य की सृष्टि पहले रची जाती है। तो चैतन्य आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल चैतन्य आत्मा कौन है? शिव बाप चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्मा नहीं कहा, चैतन्य आत्माओं के बीच में सबसे पावरफुल जगदम्बा। आत्माओं के बीच में, मन बुद्धि वालों के बीच में, बल्कि वो मन को पूरा कंट्रोल करने वाला बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि। वो सबसे पावरफुल माने आत्माओं का जो भी हुजूम है, संगठन है, उस सब उन सब का बाप है। वो बाप पहले आत्माओं को रचता है ज्ञान दान दे करके, या शरीरों को रचता है? जो आत्मा है वो तो आत्माओं की ही पहचान देगा, तो वो आत्माओं को रचता है। आत्माएं पहले तैयार होती है ज्ञान लेकर के, कि जड़ प्रकृति पहले ज्ञान लेगी है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ हैं, तो ये तो ज्ञान लेने वाले नहीं है। लेकिन जो भी जड़त्वमयी हैं, जानवर, पशु, पक्षी, जड़त्व भाई तो हैं, है? वो हित अनहित को पहचानते हैं या नहीं? हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधान। क्यों क्यों ये अंतर है? पशु पक्षियों की जड़त्व में ही बुद्धि है और मनुष्य की चैतन्य बुद्धि है। मनुष्य सर्वोपरि प्राणी है, और प्राणी नंबर बार है। तो मनुष्य सृष्टि का पहले उद्धार करेगा, उद्धार होता है उत्तर हर, ऊपर की ओर हरण करके ले जाता है। किसको? जानवर की आत्माओं को नहीं, किसको? मनुष्य आत्माओं को आत्मा का परिचय देकर ऊपर ऊंचे से ऊंचे धाम की ओर ले जाता है। तो आत्माओं का पहले उद्धार होता है, उसके बाद जड़ सृष्टि का उद्धार होगा या नहीं होगा? जड़ सृष्टि महामृत्यु के समय तामसी बन जाती है या सात्विक होती है? पृथ्वी भूकंप लाती है, जल सारी दुनिया में जलमयी कर देता है, वायु बड़े बड़े तूफान लाती है, और आग ऐसी आग बरसती है संसार में, सब भस्म हो जाता है। तो देखो, पांच तत्वों का जो संघात प्रकृति है वो माया से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए माया बड़ी चालाक है, उसने सोचा कि मैं तो नहीं जीत पाई, नहीं जीत सकती हूँ, तो क्या करूं? है प्रकृति से हाथ मिलाऊं और उसको अपने कब्जे में कर लूं। बुद्धि के द्वारा ही बरगलाया जाता है, तो वो बरगलाज में आ जाती है जगदम्बा, और जगदम्बा ही वास्तव में दूसरा नाम है ब्रह्मा का। क्या? जगदम्बा के मस्तक में जब तामसी बनती है तो कौन दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाते हैं महाकाली के मस्तक पर। वो चंद्रमा की सोल उसमें प्रवेश करके आत्मा का पार्ट बजाती है, करणहार का पार्ट बजाती है, और शरीर है करणहार या करावनहार? शरीर करणहार और आत्मा करावनहार। तो सारी दुनिया में प्रलय हो जाती है। क्या प्रलय? प्रकष्ट रूप से लीन हो जाती है दुनिया। कैसे? जो पांच तत्वों के शरीर हैं, पंच तत्वों से बना कोई ऐसा शरीर रह जाता है दुनिया में जो सदा सत्य है। क्या पंच तत्व विनाशी हैं या अविनाशी हैं? विनाशी हैं। पांच तत्व को एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट का कभी विनाश होता है? रूप बदलता है लेकिन विनाश तो नहीं होता। तो पांच तत्वों का एक ऐसा भी संसार में संघात है कि सारी सृष्टि का रूप दिखाई नहीं देता, बदल जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन एक रूप व्यक्त रहता है। कौन? प्रजापिता, जिसको शंकर नाम से बोला जाता है। कि शंकर का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। वो ही शंकर झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है, मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर। क्या? सभी देह अभिमानी मनुष्य आत्माएं जिनका देहभान 100% छूटता ही नहीं, एक के अलावा। जिसका छूटता है वो शिव समान बन जाता, जिनका नहीं छूटता वो शिव समान नहीं बनती। तो जो शिव समान बन जाता है उसी का नाम शिवलिंग पड़ता है। वो ही शिवलिंग त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, जिसमें भगवान का साकार बड़ा रूप भी है और छोटा रूप। भगवान बाप भी यही कहते हैं, मेरा छोटा रूप याद नहीं आता है तो तुम क्या करो, बड़े रूप को याद करो। वो भी अविनाशी है इस सृष्टि पर, यह विनाशी है वो भी अविनाशी है, तो उसको याद करेंगे तो तुम अविनाशी बनेंगे या विनाशी बनेंगे। तो कुछ विरली आत्माएं हैं जो निराकार को खींच खींच के याद करने में एक्सपर्ट बन पाती है, वो हैं अष्टदेव, स्थूल बीज मनुष्य सृष्टि के अलग अलग धर्मों के पूर्वज, पूर्व माने पहले जमाने जन्म लेने वाले, और उनमें एक और है जो सबका पूर्वज, आठों का भी पूर्वज है, लेकिन वो आठ भी जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है एक ही रहता है, और बाकी सब कुछ न कुछ टाइम के लिए परमधाम में पड़े रहते हैं, जड़त्वमयी हो जाते हैं। नंबर बार उतरेंगे या एक साथ उतरेंगे? नंबर बार उतरते हैं। तो जो पहला नंबर है अल्लाह अव्वल दीन जिसे कहा जाता है, अल्लाह माने ऊंचे थे, ऊंचे ने अव्वल नंबर दीन धर्म की स्थापना की, वो एक ही धर्म पिता है जो इस सृष्टि पर रहता है, और उसका शरीर है जड़त्वमयी, जो पांच तत्व हैं उनका बीज क्या, और जो आत्मा है वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बीज मनुष्य आत्मा है। वो मनुष्य आत्मा जब उतरती है एक सेकंड में जाती है, एक सेकंड में उतरती है, उससे भी कम, तो क्या करती होगी, पंच तत्वों की जो जड़त्वमयी सृष्टि है उसका निर्माण का बाप है या नहीं, जड़ चेतन का बीज कौन है, जड़त्वमयी सृष्टि और चैतन्य सृष्टि प्राणी मात्र, उन दोनों का बीज कौन है, एक ही है ना, तो उससे ही सारा जगत निकलता है क्या है। झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, कहां खींची चली जा रही है, कौन है मीडिया जिसकी तरफ खींच रही है, शंकर है, मनुष्य गुरुओं ने नाम दे दिया है कृष्ण का, किसका नाम दे दिया, कृष्ण का नाम दे दिया, कृष्ण भगवान वास्तव में है शिव शंकर भोलेनाथ का कंबाइंड रूप, और उस स्वरूप में मन मना भव हो कर जाती है, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, वो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसके मन में, मन के संकल्प में, क्या संकल्प है मन का, एक शिव बाबा दूसरा मुझे, वो बिंदी को ही बाबा समझती है क्या, मुरली में क्या बोला, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई, बाकी सब कुछ इतना मात्र में विद्या। क्या ये जो भी जड़ जन्म में सृष्टि है, चैतन्य देखने में आते हैं, जो भी जड़ तो भाई सृष्टि है, पहाड़, समंदर, नदियां, अलग अलग देश, वो सब क्या है? विनाशी है। उन सब का बीज एक है, वो सब अव्यक्त रूप में, बीज रूप में उसमें समा जाते। चैतन्य आत्माएं भी समा गई और सारे पांच तत्व भी उस एक में समा गए। इसलिए कहा जाता है कि जो बाप है वो मूल रूप में जन्मदाता है, माता जन्मदाता मूल रूप में नहीं है। तो सारी सृष्टि का बाप कौन है? है प्रजापिता कहो, वो अधूरा रूप है, पतित रूप है, वो पुरुषार्थ करके संपन्न बनता है तो लिंग रूप बन जाता है। कैसा बन जाता? साकार सो निराकार बन जाता है। वो साकार भी है और निराकार भी है, इसलिए गीता में उसको अव्यक्त मूर्तना कहा गया है। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है। अरे अव्यक्त कहाँ? शिवलिंग देखने में नहीं आता है? जो देखने में आए वो व्यक्त, जो देखने में ना आए अव्यक्त। तो क्या शिवलिंग देखने में नहीं आता? आता है, आता है, पूर्ण रूप से देखने में आता। अरे बिंदु आत्मा और बिंदु आत्माओं का बाप तो देखने की चीज वैसे भी नहीं है। तो शिवलिंग जो है दिखाते हैं वो संपन्न रूप, पूर्ण रूप से देखने में आता है हर तरीके से, नहीं कि हाँ। अरे दो बातों में से एक ही सत्य होगी ना, देखने में आता है या नहीं आता है? उसके हाथ पांव नाक आंख कान साकार के दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए निराकार है, इसीलिए अव्यक्त है। वो लिंग रूप अव्यक्त भी है, उसके हाथ पांव नाक आंख कान कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दिखाई नहीं देती, इसलिए अव्यक्त है, निराकार भी है। निराकारी स्थित है माने उसको शरीर है कि नहीं? लिंग रूप को शरीर है या नहीं? जिसकी पूजा होती है मंदिरों में वो पूजा शरीरधारियों की होती है या निराकार ज्योतिबिंदु की पूजा होती है? बाबा कहते, शिव बाबा कहते, मेरी पूजा नहीं होती है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो कौन पूज्य बनता है? तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, चलो सालिग्राम के रूप में पूज्य बनते हो रुद्रमाला के मणके, तो सालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है। तुम बच्चे ही लिंग रूप में, कोई न कोई बच्चा है जो लिंग रूप में बड़ा लिंग बनता है, बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं ना, किस बात की यादगार? पांडवों के बड़े बड़े लंबे चौड़े चित्र बनाते हैं, महात्मा बुद्ध का बड़ा लंबा चौड़ा चित्र बनाते हैं, क्यों है? बड़ा काम किया तो बड़ा चित्र बनाया। तो लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं रुद्र यज्ञ में, और सालिग्राम वो किसकी यादगार? सालिग्राम किसकी यादगार? आत्माओं की यादगार। और लिंग है कौन से बाप की? बेहद के बाप दो हैं, मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। शिव बाप कहते हैं मंदिर में भी तुम जो पूजा करते हो वो मेरी पूजा नहीं करते, तुम आपे ही पूज्य बनते हो। क्या चाहे शिवलिंग के रूप में पुरुषार्थ करके निराकारी चीज धारण करके शिवलिंग बन जाते हो, और चाहे तुम बच्चे देवताओं के रूप में निराकारी स्टेज बिंदु रूप धारण कर लेते हो, क्या वो देवताओं की पूजा भी तुम्हारी पूजा है और लिंग रूप में भी जो पूजा है वो भी तुम्हारी पूजा है? मेरी पूजा मेरे को तो याद कर सकते हो। ओम शांति।